मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 18 जनवरी 2018 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट के लिए मुझे बड़ा एक खूबसूरत विषय मिल गया है और इस विषय को प्रोवाइड करने के लिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि शायद आप इतना सुनने के बाद विषय को समझ भी गए होंगे, बशर्ते कि आपने डीडी न्यूज सुनी और देखी हो या यहां तक कि रेडियो न्यूज भी सुनी हो। कल मित्रों बड़ा मजा आया जब प्रधानमंत्री और हमारे इसराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू जी हैं वो किसी एक प्रोग्राम में थे, खासकर आई क्रिएट सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, उन्होंने कहा कि ये जो आई क्रिएट सेंटर, ये पूरा आई क्रिएट है बेसिकली, तो नाम आई क्रिएट। अब देखिए कि अंग्रेजी में होता यह है कि अगर आप आई क्रिएट कर रहे हैं तो जो आई होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, यानी कि बड़े अक्षर में होगा। उन्होंने कहा कि हमने जानबूझकर इस लेटर को जो कैपिटल में होना चाहिए था, यानी कि बड़े में होना चाहिए था, उसे छोटे में रखा है, जानबूझकर रखा है। तो देखिए ग्रामेटिकल दृष्टि से तो यह गलत है, हाँ प्रचार की दृष्टि से वो आप कह लीजिए भले ही सही हो, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से उसे बड़ा ही होना चाहिए। लेकिन देखिए कि इसकी कितनी खूबसूरत व्याख्या प्रधानमंत्री जी ने की, और ये जो खूबसूरत व्याख्या है सच पूछिए तो ये एक तरह से दर्शन शास्त्र से आई हुई व्याख्या है, या यूं कह लीजिए कि आध्यात्मिक जगत से आई हुई व्याख्या है, और दुनिया की लगभग सभी दर्शन शास्त्र में आपको इसकी व्याख्या लगभग इसी रूप में मिलेगी। शब्द बदल जाएंगे, वाक्य बदल जाएंगे, उदाहरण घटनाएं बदल जाएंगी, लेकिन उसका जो मूल सार है वो यही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो आई है, आई यानी कि मैं यानी कि अहंकार, ये जो मैं है, ये जो अहंकार है, ये जब बड़ा हो जाता है तब ये सभी के दरवाजे बंद कर देता है, फिर अंदर कुछ आने नहीं देता, तो इसीलिए हमने इसको छोटा रखा है ताकि चीजें अंदर आ सके। वो जिस अंदर की बात कर रहे थे वो इनोवेशन की बात कर रहे थे कि ये जो सेंटर है, चूंकि ये इनोवेशन से रिलेटेड सेंटर है, और मैं अपने प्रिय श्रोताओं को बता दूं कि आज के का जो हमारा डेली ऑडियो लेक्चर है उसका मुख्य विषय भी मैंने आई क्रिएट ही रखा है, उसकी व्याख्या में अपने डेली ऑडियो लेक्चर में करूंगा। यहां तो मैं आई के बारे में कुछ आप लोगों से अपने विचार शेयर करना चाह रहा हूं। मित्रों सच पूछिए तो मनुष्य जो मुझे लगता है मूलतः एक मनोवैज्ञानिक आइडेंटिटी है। देखिए वो यंत्र है, ठीक है, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, ये एक मशीन की तरह काम करता है, लेकिन इसके काम करने की जो प्रणाली है उसको नियंत्रित करने वाला जो सबसे बड़ा तत्व है, जिसे हम माइंड कह देते हैं, जिसे हम दिमाग कह देते हैं, जिसे हम चेतना भी कह देते हैं, सच पूछे तो वह हमारा कॉन्शस ही है, हमारा मस्तिष्क ही है। इसी को आप दूसरी भाषा में मनोविज्ञान कह सकते हैं। मनोविज्ञान एक व्यापक शब्द है, इसलिए मैंने मनोविज्ञान की बात कही, और हमने देखा है कि आपने भी देखा है, जाना है कि जैसे ही इसमें थोड़ी सी खराबी होती है, जरा सी भी खराबी हो, तो किस तरह से हमारा पूरा का पूरा यंत्र बेकार हो जाता है। यहां तक कि अगर जरा सी नींद भी आ रही है तो आप देखें कि पूरा का पूरा ये जो हमारा हमारी जो मशीनरी है ये किस तरह से गड़बड़ाने लगती है। यानी कि मनोविज्ञान में जरा सा भी फर्क पड़ा, आप हम थोड़े से भी उदास हो गए, थोड़े से भी उत्साहित हो गए, तो देखिए कि पूरे के पूरे यंत्र में उनकी लहरें फैल जाती है, तरंगे फैल जाती हैं। इतना जबरदस्त होता है मनोविज्ञान। अब उस मनोविज्ञान की जो संभावनाएं हैं मित्रों वह अनंत हैं, इन्फिनिट। कल्पना नहीं कर सकते कि ये मनोविज्ञान कितना चमत्कार कर सकता है, किए भी हैं, ये कोई कहने की बात नहीं है। जैसे जब मैं आइंस्टीन के बारे में सोचता हूं, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, तो उनके पास कोई लैब नहीं था कि वो जाकर के प्रयोगशाला में कुछ चीजों के प्रयोग कर रहे थे, कुछ तत्व और यौगिक के माध्यम से वो कुछ प्रयोग कर रहे थे, नॉट एट ऑल। वो तो दो कमरों के छोटे से फ्लैट में रहते थे जैसा कि मैंने पढ़ा है, और अपना एक छोटे से कमरे में बैठ करके बस किताब, कॉपियां और कलम टेबल पे बैठे हुए हैं, और उसी से सब कुछ सोच रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं और दुनिया को बदलने के और समझने के सिद्धांत दे रहे हैं। तो बिना लैब के उन्होंने जो कुछ भी किया बेसिकली कहां से किया, वो मनोविज्ञान से आया, उनका मनोविज्ञान था। दोस्तों इसमें जो आई है यह इस मनोविज्ञान के फर्टिलिटी के रास्ते में या इसके उत्पादन क्षमता के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी बाढ़ है। क्योंकि जैसे ही यह होता है कि मैं यानी कि अहम यानी कि इसी को आप कह सकते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं महान हूं, मैं सुंदर हूं, जो भी मैं मैंने यह हासिल किया, मैं यह करता हूं, मेरे बराबर कोई दूसरा नहीं है, मुझसे कोई जीत नहीं सकता, मुझसे कोई बात ना करे, कोई मेरे समकक्ष नहीं, ये मैं। जब हम समझ लेते हैं तो देखिए सीधी सी बात है कि हमने अपने मनोविज्ञान के घर का शटर डाल दिया, डाउन कर दिया, शटर डाउन कर दिया। अब हवा भी अंदर नहीं घुस सकती, क्योंकि जब आपको लग ही नहीं रहा है कि मैं खाली हूं या मैं कुछ अधूरा भी हूं, तो उसको भरने के बारे में, उसको पूरा करने के बारे में आप सोचेंगे ही कैसे। और जब मैं सोचूंगा ही नहीं तो फिर कोई आएगा कैसे, क्योंकि देखिए जो चीजें आती हैं वो तो खाली जगह पर ही आती हैं, उनको जगह, अपने लिए जगह चाहिए ना। जो क्रिएशन होगा, जो नई चीजें आएंगी, वो वैक्यूम में ही आएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा खाली कीजिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को जो हमारे 15 दिन की क्लासेस होती हैं लगातार ये हिदायत देता रहता हूं, निर्देश देता रहता हूं, रिक्वेस्ट भी करता रहता हूं कि प्लीज अपने को यहां खाली करके आइए, अपने को खाली करके आइए, भर करके मत आइएगा। अगर आप भरी हुई प्याली लेकर के आएंगे तो मेरे पास उसमें डालने के लिए कुछ नहीं है। जितनी खाली प्याली लेकर के आएंगे, जितनी खाली और बड़ी प्याली लेकर के आएंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप उतना ही ज्यादा भर करके ले जाएंगे। अब भरी हुई प्याली में तो और कुछ भी नहीं डाला जा सकता, एक बूंद भी नहीं डाला जा सकता। और अगर खाली होगी तो उसमें एक बूंद भी अगर डालेंगे तो वो एक बूंद का इजाफा हो जाएगा। तो मित्रों ये जो आई है ये अपने भरे पूरे होने का मात्र भ्रम है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में भी यही कहा गया है। अब दुनिया के जितने भी दर्शन उठा करके देखिए, सबने कहा है कि सबसे बड़ी जो चुनौती है आदमी की वो यह है कि कैसे वह अपने इस अहम से मुक्त हो, अपने इस अहंकार को छोड़े। और मजेदार बात यह है कि उसने ये जो अहंकार की रचना की है, जिस दुनिया में वो रह के अपने को उसका बादशाह समझता है, वो खुद द्वारा रची गई दुनिया है। दूसरे कुछ नहीं समझ रहे हैं, पीठ के पीछे तो आलोचना करते हैं कि देखो ये अपने को पता नहीं क्या 30 मार्का समझता है। लेकिन ये बात अलग है कि जो पीठ के पीछे जो कह रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, 30 मार्का कह रहे हैं व्यंग में, वही सामने आकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं कि आपके जैसा न तो कोई हुआ है और न कोई होगा, और हम अपने ही भ्रम में इतने आत्ममुग्ध हैं, अपनी ही सुंदरता पर इतने ज्यादा रीझे हुए हैं कि उसकी बात को सच मान लेते हैं, और वही भ्रम जिसे हम पाले हुए थे और ज्यादा पुख्ता हो जाती है और ज्यादा मजबूत हो जाती है। मित्रों इसलिए बाइबल में एक बड़ा खूबसूरत वाक्य कहा गया है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बाइबल में कहा गया है कि प्रभु के राज्य में, मेरे प्रभु के राज्य में यानी कि स्वर्ग में, आप कह लीजिए सिंपली भाई शब्दों में, एक बार सुई के छेद से ऊंट निकल सकता है। अब सोचिए कि सुई में धागा जिसमें पिरोया जाता है उसका छेद कितना बड़ा होता है, और उसमें से ऊंट निकल सकता है जो सबसे ऊंचा जानवर है। लेकिन मेरे प्रभु के राज्य में जो धनी व्यक्ति हैं उनका प्रवेश नहीं हो सकता। देखिए वहां उन्होंने धनी शब्द का प्रयोग किया है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कहा है कि जो धनवान है या जिनके पास पैसा है वो स्वर्ग नहीं जा सकते। उनका जो मंतव्य वहां था ये था कि जिसके पास धन होता है बेसिकली उसके पास अहम आ जाता है, वो घमंडी हो जाता है। देखिए जिस काल में हमारे ईसा जी रहे हैं उस काल में घमंड करने के लिए सबसे बड़ा जो आधार होता था वो धन ही होता था, इसलिए उन्होंने ये बात कही। आज उसके बहुत से आधार हो गए। तो यहां धनी व्यक्ति का संबंध आप धन से ही मत लगाइए, कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारे अंदर अहम पैदा कर सकती हो। तो जो अहम जिसके अंदर होगा, जो अहम से परिपूर्ण होगा, उसका स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता, यानी कि वह कभी आध्यात्मिक जीवन जी ही नहीं सकता, वह हमेशा अकेला रहेगा। कौन ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जो अपनी अपनी ही गा रहा है, दूसरे की सुन नहीं रहा है, बोलने नहीं दे रहा है, आप भी कितना सुनेंगे और वो भी झूठा झूठा, कितना गुणगान करेंगे। तो वह अकेला ही होगा और कुछ समय के बाद डेफिनेटली फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाएगा। देखिए, अगर मैं अपने को बहुत 30 मार का तोपचंद समझ रहा हूं तो समझता रहूं, ये मेरी एरोगेंसी हो सकती है, लेकिन मेरी एरोगेंसी से दूसरों को क्या लेना देना, उनको लेना देना हो सकता है जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका जीवन मुझसे कुछ संबंधित है, कुछ फायदा चाहता है, वो थोड़ी बहुत मेरी लल्लो चप्पू कर लेंगे, बाकी दुनिया को क्या लेना देना। एक दिन खत्म हो जाएगा और दुनिया फिर उसी तरीके से याद करेगी जो कि वास्तव में याद किया जाना चाहिए या भुला दिया जाना चाहिए, आलोचना करनी चाहिए या खत्म ही कर देना चाहिए। तो मित्रों, ये बड़ा खूबसूरत शब्द मुझे मिला आई, और इस आई पर मैंने थोड़ी सी बातें आप सबसे की हैं, और मैं समझता हूं कि हम सब में जो चेतना है, बुद्धि है, वो इसलिए भी है कि हम लगातार अपने इस आई की देखरेख करते रहें, इसके चौकीदार बने रहें। चौकीदार का मतलब इसकी रक्षा करने की बात नहीं है, इसका मूल्यांकन करते रहें, इसके दरोगा बने रहें, इसके समीक्षक बने रहें और देखें कि इसमें कहां गड़बड़ी हो रही है, कहां खामियां आ रही हैं, और जैसे लगे कि नहीं, ये जो आई है ये अंकुरित हो रहा है, इससे पहले कि वो अंकुरित हो कोशिश करें कि उसे कुचल दें और फिर देखें कि कैसे इस आई का अभाव हमको वी में कन्वर्ट कर देगा, हम सब और आपके पास लोगों का हुजूम लग जाएगा, फिर आप आई की तरह अकेले नहीं रहेंगे। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को मैं यहीं समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।